તારીખ 29/1/1993 શ્રી મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 8.
શ્રી મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક પ્રથમ અધિકાર અનંતાદિક પ્રયોજન સિદ્ધિ ગ્રંથ કે પ્રારંભ મેં टोडरमल जी साहब ने पंच परमेष्टि का स्वरूप कहा और पंच परमेष्टि के स्वरूप के ज्ञान पूर्वक उसका बहुमान और भक्ति किया। सब कहते हैं कि इसमें हमारा प्रयोजन क्या, ऐसे पंच परमेष्टि का स्वरूप ज्ञान करे और उनकी भक्ति करे उसमें हमारा प्रयोजन कैसे सिद्ध होता है। प्रयोजन का तो परिभाषा आगे कर दिया कि जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, अस्ति नास्ति दोनों, सुख की प्राप्ति हो और दुख का नाश हो, ऐसे कार्य को प्रयोजन कहते हैं, उसी का नाम प्रयोजन है। तो वहां इधर सुख की प्राप्ति हुए दुख का नाश कैसे होगा पंच परमेष्टि से, ये बात कहते हैं शुरू से। आत्मा के परिणाम तीन प्रकार के हैं। किसी भी जीव के परिणाम को का विचार करे, परिणाम के प्रकार का विचार करे तो वो तीन प्रकार के होते हैं, संक्लिष्ट परिणाम, विशुद्ध परिणाम और शुद्ध परिणाम। अपना संक्लिष्ट परिणाम है संक्लिष्ट विशुद्ध 29 बोल में समय सार में। संक्लिष्ट जहां वहां तीव्र कषाय रूप संक्लिष्ट है। संक्लिष्ट क्या है? तीव्र कषाय को संक्लिष्ट कहते हैं, उसको पाप भी कहते हैं और उसको अशुभ परिणाम भी कहते हैं। तीन नाम है इनके। मंद कषाय रूप विशुद्ध परिणाम है, उसको पुण्य भी कहते हैं और इसको शुभ परिणाम भी कहते हैं। मंद कषाय भी कहते हैं और विशुद्ध भी कहते हैं। तथा कषाय रहित परिणाम है सो शुद्ध है, वो कषाय रहित परिणाम है और उसको शुद्ध परिणाम भी कहने में आते हैं और उसमें अनंत गुण शुद्ध रूप प्रकट होते हैं, इसलिए अनेक प्रकार के गुण से भी उसका नाम दिया जाता है। वो आनंद रूप परिणाम है, शांत रूप परिणाम है, सम्यक ज्ञान रूप परिणाम है, सम्यक दर्शन रूप परिणाम है, वो गुण विशेष से उनका नाम है शुद्ध परिणाम का। लेकिन वो कषाय रहित समझना। वहां वितराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरण आदि घातिया कर्म है उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंद होता है और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंद होता है, तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र मंद हुआ था उसको भी मंद करता है। क्या कहते हैं ये टोडरमल जी साहब की शास्त्र लिखने की पद्धति आगम पद्धति है। क्या अध्यात्म पद्धति से ये शास्त्र नहीं लिखा गया है, आगम पद्धति से ये शास्त्र लिखा गया है। तो जीव के परिणामों की बात करेंगे तो साथ साथ उसमें कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा है वो बात बताते जाएंगे, क्योंकि आगम पद्धति कर्म आश्रित है, परमाणु आश्रित है, अध्यात्म पद्धति आत्मा आश्रित है, उतना फर्क है। यहाँ बात लेते हैं जीव के परिणाम को समझाने के लिए और साथ साथ में कर्म का निमित्त कैसा होता है उसी पद्धति से इस बात को समझाएंगे। क्या क्या कहते हैं कि वहां वितराग विशेष ज्ञान रूप अपना स्वभाव, स्वभाव कैसा है, वितराग विज्ञान रूप अपना स्वभाव है, नाता दृष्टा रूप परिणमन करना, वितराग भाव रूप परिणमन करना, ऐसा अपना स्वभाव है। ऐसा स्वभाव को प्रगट होने में घातक होते हैं निमित रूप से, ऐसा शुद्ध परिणमन स्वभाव रूप परिणमन प्रगट होने में जो घातक निमित रूप घातक होते हैं, परिणाम तो अपने होते हैं लेकिन कर्म का उदय उसमें निमित गिनने में आया है। ऐसा ज्ञानावरण आदि जो घातिया कर्म है उनके उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तीव्र बंद होता है। उस घातिया कर्म का बंद कहां कैसे होगा, कोई जीव पाप का परिणाम करेगा तो उसको ज्ञानावरण का तीव्र बंद हो जाएगा। क्या परिणाम तो जीव का है लेकिन जो तीव्र कषाय रूप परिणाम करेगा उसको ज्ञानावरणादि दर्शनावरणी मोहनी अंतराय चारों घातिया कर्म का तीव्र बंद होने वाला है जो पाप करेगा उनको। और विशुद्ध परिणामों द्वारा यानी शुभ परिणाम करेगा तो मंद बंद होएगा, तीव्र बंद और मंद बंद दो प्रकार के बंद है। जैसे कोई दोरा से पतली डोरी से बांधे या कोई रस्सी से बांधे तो रस्सी का बंध मजबूत होता है और डोरी का बंध कमजोर होता है, ऐसे तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो यानी तीव्र शुभ परिणाम हो, शुभ परिणाम भी तीव्र हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध हुआ था पाप बंध हुआ था उसको भी मंद करता है। सत्ता में पाप का बंधन किया हुआ कर्म पड़ा है वो तीव्र कषाय से बंधा हुआ कर्म है, वर्तमान में कोई तीव्र शुभ करेगा तो उसका प्रकृति का संक्रमण हो जाएगा, वो पाप प्रकृति के परमाणु पुण्य प्रकृति में पलट जाएंगे। ऐसा वर्तमान परिणाम से नए कर्म बंधन में तो जो फर्क पड़ता है वो पड़ता ही है लेकिन जो बंधे हुए संचित कर्म है उसमें भी फर्क पड़ता है। उसमें तीन प्रकार का फर्क पड़ता है, एक तो प्रकृति का बदल जावे तो संक्रमण कहते हैं और स्थिति में गिनाधिकपणा होता है, जो स्थिति बढ़ जाती है तो उसको उत्कर्षण कहते हैं, स्थिति घट जाती है तो उसको अपकर्षण कहते हैं। ऐसे तीन प्रकार का सत्ता में रहे हुए कर्म में भी फेरफार हो जाता है वर्तमान परिणामों के कारण। क्या कहा इधर कि अगर विशुद्ध परिणाम प्रबल हो मैंने तीव्र शुभ परिणाम हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध मैंने पाप का बंध किया था उसको भी मंद करता है, वो प्रकृति पुण्य में पलट जाती है। शुद्ध परिणामों द्वारा बंध नहीं होता, ऐसा यहाँ एक दृष्टांत लिया है कि शुभ से अशुभ वाला शुभ हो जाएगा, वैसे पुण्य कर्म का बंधन किया हो शुभ कर्म का बंधन किया हो और तीव्र पाप का परिणाम करे तो जो पुण्य की प्रकृति बंधी हुई है वो सत्ता में पाप में संक्रमण हो जाएगी, उसका भी पाप प्रकृति में पलटा हो जाएगा। ऐसा दोनों तरफ बनता है तीव्र भाव ने तीव्र भाव के कारण से।
ये नहीं है, नहीं। और
ये बंद का प्रकरण भी चलता है तो बंद में क्या क्या होता है उतनी बात है, ये बंद का नाश की बात नहीं चलती है। वो अभी कहेंगे कि जो शुद्ध परिणाम है उसके द्वारा बंद नहीं होता है लेकिन केवल कर्मों की निर्जरा ही होती है, तो नाश्ता कारण तो शुद्ध परिणाम है। तो इससे क्या हुआ कि लोग धर्म के क्षेत्र में पुण्य के शुभ परिणाम करके कर्म की निर्जरा मानते हैं, वो तत्व की भूल है। ऐसे निर्जरा होती नहीं है, क्योंकि बंद और निर्जरा दोनों तत्व है। बंद भी तत्व है और निर्जरा भी तत्व है। एक तत्व में दूसरा तत्व का आभास हो जाना वही मिथ्या स्वरूप कर्म की भूल है। वो नव तत्व में नव तत्व की भूल है, इसलिए मिथ्यात्व होता है। शुद्ध परिणामों द्वारा बंध नहीं होता, केवल उनकी मैंने कर्म की निर्जरा ही होती है। और अहंत आदि के प्रति स्तमन आदि रूप जो भाव होते हैं वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं। क्या कहा? अहंत आदि पंच परमेष्ठी भगवंत है, वो परद्रव्य है। क्या है? परद्रव्य है। तो शुभ और अशुभ परिणाम परद्रव्य आश्रित होता है और शुद्ध परिणाम स्वद्रव्य आश्रित होता है। दोनों का अवलंबन ही अलग अलग है। अपना स्वरूप के आश्रय से शुद्ध परिणाम होंगे और अपना स्वरूप छोड़ करके दूसरे पदार्थ से का आश्रय करेंगे तो उसमें संक्लेश भाव से पाप बंधेगा और मंद कषाय रूप परिणाम से पुण्य बंधेगा। तो यहाँ अरहंत आदि के प्रति जो स्तमन आदि रूप जो भी भाव होते हैं, स्तमन का, पूजा का, भक्ति का, वंदन का, नमस्कार का, जप का, जो भी भाव होते हैं वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं। उसमें कषाय की मंदता होती है, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम है, इसलिए पुण्य के परिणाम है। पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। सो ऐसे परिणामों से अपने घातक घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही वितराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। और आगे जा करके क्या होता है कि यहाँ से अवलंबन उठा करके जैसा वितराग स्वसंवेदन रूप स्वरूप अरहंतादि का है, ऐसा अपना स्वभाव है, ऐसा अपना स्वभाव का अवलंबन लेने में पहला पूर्व परिणाम निमित्त हो गए तो कषाय मिटाने का साधन उसको बना लिया। तो आगे कह दिया भेद विज्ञान का कारण है, भगवान की प्रतिमा भेद विज्ञान का कारण है, वो बात तो बताया। तो अवलंबन जब पलट जाता है, वहां से उपयोग पलट कर अपने स्वरूप में आता है तो वो समस्त कषाय मिटाने का साधन है। इसलिए शुद्ध परिणाम का भी कारण निमित्त कारण गिनने में आता है। सो ऐसे परिणामों से मैंने शुद्ध परिणामों से अपने घातक घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही वितराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए घाती कर्म का नाश होता है और अपना शुद्ध परिणमन विशेष वितरागता प्रकट होती है। वो भाषा में अवलंबन पलटता है वो बात नहीं आती है, लेकिन उतना अध्ययन समझना चाहिए। जिसको अध्यात्म का विषय का समझ नहीं होती है उनको तो शुभ का भी कारण भगवान का पंच परमेष्ठी और शुद्ध का कारण भी पंच परमेष्ठी दोनों को ले लेते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है अवलंबन का वो पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि अपन तो पंच परमेष्ठी का जप करते हैं, माला करते हैं नमस्कार मंत्र के, तो अपने को तो धर्म होता है, अपना तो कर्म का नाश हो जाएगा। लेकिन वो अवलंबन पलटेगा तब ये होगा, इसके बिना होगा नहीं। तो उसमें निमित्त तत्व दो प्रकार का है, एक शुभ परिणाम का निमित्त होता है और शुद्ध परिणाम का भी निमित्त होता है पंच परमेष्ठी।
अब तो होता है,
नहीं ठीक है। यहाँ और अधिक स्पष्टता, गुरुदेव तो बहुत स्पष्टता करते थे शास्त्र पढ़ते वक्त।
तो कारण
शुभ कारण मैंने कारण तो जो पंच परमेश्वर की बात लेते हैं पर ग्रोध है, लेकिन निमित्त लेते हैं निमित्त। जितने अंशों में वह हीन हो उतने अंशों में यह प्रकट होता है, जितने अंशों में उसका नाश हो जाए उस कर्म बंध का उतना स्वभाव प्रकट होता है। और स्वभाव प्रकट होता है तो उसमें एक सुख गुण भी है, तो उसमें सुख प्रकट होता है और प्रयोजन सुख का है, इसलिए प्रयोजन की सिद्धि अरंतादिक से होती है, ऐसा लेते हैं। इस प्रकार अहंतादि के द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है, इस प्रकार सिद्ध होता है। शुद्ध परिणाम करे तो, अकेले शुभ परिणाम करेंगे तो फिर प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। ભલે પર છે પણ નિમિત્ત તો પર જ હોય ને, ખરેખર તો શુદ્ધતામાં નિમિત્ત છે, શુભ નો નિમિત્ત નો મેળ નથી ખાતો। આપના પ્રશ્ન થી ઉલટી વાત છે, શુદ્ધતા મેં વો નિમિત્ત પડ સકતે હૈ ક્યોંકિ વે શુદ્ધ હૈ, વહાં શુભ નહીં હૈ, ઇસલિયે વો શુદ્ધતા કે નિમિત્ત તો અવશ્ય હૈ, ક્યોંકિ ઇધર શુદ્ધ ભાવ પ્રગટ કરે, નિમિત્ત ભી શુદ્ધ ઔર ઉપાદાન ભી શુદ્ધ, યે બાત હો સકતા હૈ। तो शुद्धता में निमित्त है, लेकिन जिसको अंतर अवलंबन करने की विधि नहीं आती है उसको मंदकषाय रूप परिणाम होता है और उसको स्वभाव हो जाता है। उसमें एक रहस्य और भी है कि वैसे वो उतने परिपूर्ण शुद्ध है और उतनी शुद्धता है पंच परमेष्ठी में कि अज्ञानी जीव को शुद्ध परिणमन करने की विधि नहीं प्राप्त हो तो भी उनको शुभ भाव तो होवे ही। क्या शुभ भाव तो होवे ही, ये तो मूल में तो कषाय का अभाव होने का निमित्त है, लेकिन कषाय का अभाव कोई नहीं कर सके इतना पुरुषार्थ नहीं हो तो सहज कषाय की ममता तो हो ही जावे, ऐसा कहते हैं। ऐसी बात है, सुगानी जी की एक दफे चर्चा चल रही थी सोनगढ़ में और किसी आपस में कोई बोलचाल हो गई तीव्र कषाय से, कोई बोलने लग गए, उन्होंने उतना ही कहा था यहाँ तो चर्चा चलती है, तत्व चर्चा चलती है तो कम से कम कषाय की मंदता तो होनी चाहिए। क्या कम से कम हो तो, अगर सही प्रयोजन का अवलंबन करे अपना स्वरूप का तो कषाय का अभाव हो सकता है, कषाय का नाश हो सकता है, लेकिन कषाय का नाश न हो तो कषाय मंद तो हो ही जावे, उतनी ये तीव्र पावरफुल चीज है। तो थोड़ा दूरी रह जाए तो भी कषाय की मंदता हो जाए, समीप में आ जाए तो कषाय का अभाव हो जाए। तो सुनते वो ठंडे हो गए, अरे ये क्या हो गया। हाँ शुद्ध है तो शुद्ध में निमित्त बनाए, वो खुद शुद्ध है तो अपन शुद्ध में ही निमित्त बनावे, शुभ में क्यों निमित्त बनाए। इस प्रकार अहंतादि के द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है, अथवा अहंतादि के आकार का अवलोकन करना या स्वरूप विचार करना या वचन सुनना या निकटवर्ती होना या उनके अनुसार प्रवर्तन करना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होकर रागादिक को हीन करते हैं, जीव अजीवादिक विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। इसलिए ऐसे भी अहंतादिक द्वारा वीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। क्या कहा? तो सब स्पष्ट कर दिया अभी बात को कि अथवा अहंतादिक के आकार का अवलोकन करना शांत मुद्रा है तो उसका अवलोकन करना, और आत्मस्वरूप प्रकट हो गया है परिपूर्ण उसका विचार करना, उसको ज्ञान में लेना या उनके वचन सुनना या निकटवर्ती होना भाव से, जैसे उनके स्वरूप प्रकट है वैसा अपना भी भाव में समीप आत्मस्वभाव के समीप आना यानी सन्मुख होना, स्वरूप के सन्मुख होने से निकटवर्ती होना और उनके अनुसार प्रवर्तन करना, जैसा परिणमन उन्होंने किया है वैसा अपना परिणमन करना, इस प्रकार से इत्यादि कार्य से तत्काल ही उसी वक्त निमित्त भूत होकर वो निमित्त पड़ते हैं, रागादिक को हीन करते हैं, उसका राग रस भी मंद होता है और किसी को शुद्धता भी प्रकट होती है। निकटवर्ती होना और उसके अनुसार परिणमन करना, दो बात लिया है। स्वरूप के विचार में तो थोड़ा विकल्प है, अवलोकन में भी उसका अवलोकन करते हैं तो थोड़ा उपयोग उधर जाता है, और फिर निकटवर्ती होना स्वभाव में आना, और जैसा परिणमन उनका है वैसा अपना परिणमन करना, इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होकर रागादि को हीन करते हैं, रागादि को ठंडा कर देते हैं या उसका क्षीण कर देते हैं, उसका नाश कर देते हैं। अनुसार में तो बधु परिणमन शुद्धता आनंद गुणों परिणमन आवी जाए, अनुसार मैंने जैसा है वैसा अनुसरण करना, वैसा ही परिणमन को प्रकट करना। हाँ, उन्होंने जैसा परिणमन किया है वैसा परिणमन अपने को भी करना, इससे रागादि तत्काल हीन होता है, उसी वक्त लाभ होता है। धर्म का लाभ दूसरे भाव में नहीं मिलता, धर्म का लाभ उसी क्षण में मिलता है। धर्म रोकड़ा है, उधारी वाला धंधा नहीं है, ये रोकड़े का है। जीव अजीवादि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं भेद ज्ञान, जीव अजीवादि भेद ज्ञान को विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। इसलिए ऐसे भी अहंतादिक द्वारा वीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। जैसे पंच परमेष्टि है वो अपने प्रयोजन में निमित्त होते हैं, इसलिए ये प्रतिमा आदि का व्यवहार जो है वो अनादि से जिन मार्ग में चलता है, और साधक ही प्रतिमा आदि की स्थापना करते हैं। यहाँ कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की तो सिद्धि इस प्रकार होती है, परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं? ठीक है कि वो अतीन्द्रिय सुख को तो जानते नहीं, जो आत्मा का अतीन्द्रिय सुख है वो तो अचिंत्य सुख है, चिंतन में भी नहीं आता तो वो तो जानते नहीं, और इधर जो इंद्रिय सुख है उसको जानते हैं, तो क्या ऐसा सुख मिलेगा? नहीं मिले। जैसे कि हमारे रोग हो, पाप का उदय हो, पलट कर निरोगता आ जाए, तंदुरुस्ती हो जाए, या हमारे निर्धनता हो तो सद्धनता हो जाए, तो पांचों इंद्रियों के जो विषय है उसकी प्राप्ति हो जाए। तो ऐसा काम बनेगा नहीं बने, हमको तो ये सुख चाहिए। क्या है वो सुख का परिचय है, संसार के सुख दुख का परिचय है। तो संसार का दुख मिटे और संसारिक सुख की प्राप्ति होवे, ऐसा बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अनंतादिक से ऐसा कोई लाभ होगा कि नहीं होगा, ये तो बताओ। ये प्रश्न उठाया, उसका समाधान कि जो अनंतादि के प्रति स्तवनादि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, उनसे अघातिया कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध भी होता है। क्या तुझे संसारिक सुख चाहिए तो भी वहां से मिलेगा, लौकिक सुख भी मिलेगा और अलौकिक सुख भी मिलेगा। ये तो सुख का ही निमित्त है, दुख का निमित्त तो है ही नहीं, ऐसा कहते हैं। अरंतादि का स्तवन पूजन आदि करने से शुभ भाव होगा और शुभ भाव से अघातिया कर्म की पुण्य प्रकृति का बंध होता है। क्या बोले, क्यों सिस्टम लिया है कि घातिया का नहीं होता है? शुभ भाव करे तो घातिया कर्म का तो बंध होता है, वो अशुभ होता है। क्योंकि ज्ञानावरणी का बंध शुभ नहीं है, ज्ञानावरणी में शुभ अशुभ ऐसा दो प्रकार ही नहीं है, वो तो अशुभ की प्रकृति है। अंतराय अशुभ की प्रकृति है, वो अशुभ प्रकृति है। दक्षिणावरणी चारों अशुभ की प्रकृति है। क्योंकि पुण्य भाव करे तो शुभ बंध पड़ता है, वो काय का पड़ता है आंख में से, तो वो चार का पड़ता है, अघासी का। कि जैसे असाता है तो साता हो जाए, ऐसे शरीर में सुखाकारी हो जाए, और ऐसे बाहर के संयोग है, सो वो अघाती कर्म का उदय है, वो अघाती कर्म का नहीं है। तो अघाती में शुभ प्रकृति का बंध होगा, घाती तो चारों अशुभ ही है, उसमें तो शुभ होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। क्यों भेद पैदा? अरंतादि के प्रति स्तवनादि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, उनसे अघातिया कर्मों की साता आदि चारों ले लेना साता में साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। और यदि वे परिणाम तीव्र हो, क्या विशुद्ध परिणाम शुभ भाव तीव्र हो, तो पूर्व काल में जो असाता आदि प्राप्त प्रकृतियों का बंध हुआ था, जो यहाँ संकलेशकार अर्थ पाप कर दिया ना, पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था, उनमें भी वह मंद करता है, तो उनका अनुभाग गट जाता है अथवा नष्ट करके, वो पाप का नाश हो करके पुण्य प्रकृति का रूप परिणमित कर देता है, उसको ट्रांसफर कर देता है। प्रकृति चेंज, पुण्य पाप वाली पुण्य प्रकृति में संक्रमण हो जाता है। और उस पुण्य का उदय होने पर स्वयं इंद्रिय सुख के कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है, और पुण्य का उदय से इंद्रिय सुख की सामग्री मिलेगी। तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वयं दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाएगी, असाता मिट जाएगी और साता हो जाएगी। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। तो कहते हैं कि तुझे संसार में सुखी होना हो तो भी पंच परमेष्टि की भक्ति कर, और तुझे मुक्ति में जाना हो तो भी पंच परमेष्टि तेरे उपकारी है, दोनों में तुझे उपकारी है। वो इष्ट का ही कारण है, अनिष्ट का कारण नहीं है, इसलिए उसको परम इष्ट कहने में आया है, परमेष्टि परम इष्ट। शुभ भाव करे तो नानावरणी तो बंधाय, नानावरणी तो बंधाय, नानावरणी दर्शनावरणी मोहनी અને અંતરાય, ચાર તો બંધાય બંધાય ને હા, એટલે એમ કે છે કે પૂરું શુભ કોઈ હોતું નથી, गुरुदेव कहते थे कि कोई भाव पूरा शुभ होता ही नहीं। क्यों? कि आठों शुभ तो बंद होता नहीं है, मन का मन तो आठों का होता है, मैंने आयुष का एक काल में लेगा तो सातों का तो होता ही है। तो घाती में तो शुभ शुभ दो प्रकृति है, लेकिन घातिया में तो इसका नाम ही घातिया है, शुभ कैसा हो सकता है? जिसका नाम घातिया हो वो खुद शुभ हो ही कैसे सकता है? और शुभ हो तो घात करे क्यों? इसलिए वो तो अशुभ ही है। उसकी कृपा है, जगत में एक अंश भी साता किसी को होवे यह सत्पुरुष की कृपा है। एक अंश साता से लेकर के पूर्व शुद्धता में सत्पुरुष की ही कृपा ऐसा लिया है। बहुत सत्पुरुष के प्रति उनके जो भाव है
अथवा जिन शासन के भक्त दिवादिक हैं
वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं। क्या कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी बनता है कि जो देवलोक में देव हो तो जिन शासन का भक्त होने पर वो देवलोक में गया हो। क्या जैनी हो जिन शासन का भक्त होने के बाद वो शुभ कर्म के उदय से देव बना हो, तो इधर मनुष्य को वो पाप का उदय पर उसका जब पूरा होता है तो पुण्य के उदय में वो निमित्त पड़ते हैं। उसको लोग चमत्कार कहते हैं। फिर क्या कहते हैं उसको लोग? चमत्कार कहते हैं। देखिए भाई उनको तो ऐसा हो गया, जैसे सुदर्शन सेठ को सुलिका सिंहासन हुआ तो कहे कि उनका तीव्र स्वभाव था, ब्रह्मचर्य का बहुत तीव्र स्वभाव था, और कोई तीव्र ब्रह्मचर्य के निमित्त से देवलोक में देव बना था। तो इधर उनके पर आरोप आया तो उनका तो परिणाम बहुत तीव्र शुभ का था, तो वहां उस देव को आसन हिलने लग जाता है। फिर ये क्या हुआ, कौन हिलाते हैं मुझे, इधर कौन हिलाने आया? अवधि ज्ञान से उपयोग डालता करे, कोई महात्मा शुद्ध निष्ठिक ब्रह्मचारी है, उसके ऊपर कोई पाप का उद्देश्य है, कोई आरोप आया है, उसको कोई प्रतिकूलता हुई है, वहां पहुंच जाता है वो, वहां उनका उदय में फिरफार कर डालता है। वो कर सकता है, वो बात इधर नहीं है, लेकिन इनका पाप का उदय पूरा होता है, पुण्य का उदय चालू हो पड़ता है और उनके परिणाम और प्रवृत्ति उसमें निमित्त हो जाती है। ऐसा अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक है, देव मनुष्य भी हो सकता है, देव भी हो मनुष्य भी मनुष्य को मदद करता है। कभी ये आदमी बहुत गरीब है उनको, या उनको रोग हुआ है उनको दवाई दे दो, उनको डॉक्टर को बुला दो, वैसा कर दो वैसा कर दो, तो जिन शासन के भक्त हैं वो तो दूसरे को मदद भी करते हैं, मनुष्य भी। इस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख के कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं, उनको अनुकूलता कर देते हैं, प्रतिकूलता को हटाकर अनुकूलता कर देते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं और उनका जो दुख की सामग्री है उसको दूर कर देते हैं। इस प्रकार भी ऐसा भाव आता है, इनका पुण्य का उदय हुए तो दूसरे को ऐसा भाव आता है। इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन अहंतादि द्वारा होती है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, पंच परमेश्वर के जो भक्त होते हैं, उनको ऐसा लाभ होता है, परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता। बाहर में प्रतिकूलता मिट जाए और अनुकूलता हो जाए, इसलिए अपना पारमार्थिक प्रयोजन कुछ भी हित का प्रयोजन सिद्ध होता नहीं। निर्धनता से सधनता हो जाए और निरोगता से तंदुरुस्ती हो जाए, सरोगता से निरोगता हो जाए, तो इससे कोई आत्मा का हित नहीं होता। लोग कहते हैं हम तो इतना शरीर का ख्याल करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं कि हमारा शरीर अच्छा रहता है, तंदुरुस्त रहता है, वो बात में कोई दम नहीं है। वो पूर्व का पुण्य का उदय होता ऐसा रहता है, वर्तमान में संभाल करने से कोई अच्छा रहता है ऐसी बात नहीं है, पर अच्छा रहा पुण्य के उदय से, शरीर सुखाकारी अच्छी रही तो आत्मा को कोई लाभ हो गया ऐसी बात नहीं है। आत्मा को कोई इससे लाभ नहीं होता है। तंदुरुस्ती अच्छी रही 25 साल 50 साल कुछ नहीं हुआ, हमको एक दिन भी बुखार नहीं आया, क्या एक दिन भी हमको बुखार ताव नहीं आया 50 साल में कोई एक दिन बुखार नहीं आया, तो उससे कोई आत्मा का लाभ नहीं होता। और हमारे पूर्वजों से हमारे पास संपत्ति है, कभी हमको कोई तकलीफ नहीं पड़ती है, तो इससे भी कोई आत्मा को लाभ नहीं होता। परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना आत्महित नहीं होता, क्योंकि यह आत्मा कषाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। क्या बाह्य सामग्री मिलने पर कषाय भाव से वो इष्ट अनिष्टपना करने लगता है, इष्टपना करे तो भी पाप भाव है, अनिष्टपना करे तो भी पाप भाव है। तो पूर्व के पुण्य के उदय से अनुकूल सामग्री मिली और उस सामग्री मिलने पर अच्छा बुरा तो लगेगा, पर अच्छा बुरा लगने से ये पाप परिणाम से उनको तीव्र कषाय से दुख दुखी ही होगा, उदय होगा पुण्य का और परिणाम में होगा दुख। इष्टनिष्ठ मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है, कभी सुख की कल्पना करता है वो भी दुख है, और दुख की कल्पना करता है वो भी दुख है। पहले संपत्ति 1 लाख की हुई या 10 लाख की हुई, फिर उसमें कोई ऐसा प्रसंग बना, पहले निर्धन था उसमें से बहुत श्रीमंता आ गई, और फिर 90% पैसा चला गया, क्या होगा दुख होगा। तो निर्धन था उस वक्त तो कुछ नहीं था, वो 10वां भाग का पहले मिला तब तो खुशी हुआ था, और बाद में 10वां भाग का रह गया तो दुखी हो गया। जैसे एक आदमी के पास 1 पाई भी नहीं है, उसको 1 लाख रुपया मिल गया, तो पहले 10,000 मिला तो बहुत सुखी मानने लगा, अरे क्या आपने को तो 10,000 मिल गया। फिर आगे बढ़कर 1 लाख हो गया, फिर 1 लाख में से 90,000 चला गया, वो 10,000 में फिर दुखी रहा कि सुखी रहा। 10,000 तो 10,000 है, पहले 10,000 में सुख मानता था, अब वही 10,000 में दुख मानने लगा। तो 10,000 तो 10,000 है, वही संख्या में सुख और वही संख्या में दुख, सुख दुख की कल्पना करता है जी।
कोई ठिकाना
नहीं है। कल्पना में क्या ठिकाना है, कल्पना मैंने क्या, कल्पना माने वास्तविकता से जो दूर है उसी का नाम कल्पना है, जो वास्तविकता नहीं है उसमें कोई वास्तविकता है ही नहीं,
पहले 10,000 भी सुख का कारण नहीं था, पीछे का 10,000 भी दुख का कारण नहीं था, दोनों में कल्पना ही किया है। कल्पना में तो हवा में उड़ना होता है और क्या। कल्पना तो कल्पना ही है आखिर में, जितनी भी करे वो शब्द कल्पना ही रखा है इधर, क्योंकि यह आत्मा कषाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्ट बना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। सुख दुख की क्या करता है, कल्पना करता है, वास्तव में जो सुख दुख है वो वहां है नहीं। कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं है। जैसे भगवान को कषाय का अभाव हो गया है, तीर्थंकर देव को तो बाहर में बहुत अनुकूलता है, पुण्य का उदय सर्वोत्कृष्ट है, तीर्थंकर प्रकृति का समोसरण की रचना होती है, इंद्रादि का करके स्तुति करते हैं, तो भगवान को इसका सुख होता है कि नहीं होता है। और 13वें गुण स्थान में तो परेशान नहीं होता है, उपसर्ग नहीं होता है, लेकिन मुनि दशा में होता है तो वहां वो दुख का कारण नहीं होता। मुनियों को उपसर्ग परिषद दुख का कारण नहीं होता, और कोई वंदनादि करते हैं तो सुख का कारण भी नहीं होता, क्योंकि कषाय का अभाव है। कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं है, दाता मैंने निमित्त नहीं है, निमित्त बनावे तो निमित्त कहने में आता है, निमित्त नहीं बनावे तो निमित्त कहने में नहीं आता। तथा कषाय है सो सर्व आकुलतामय है, जितने भी कषाय हैं ये सर्व आकुलतामय है, इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना यह भ्रम है। क्या तात्पर्य क्या लिया कि कषाय तो सर्व आकुलतामय है, इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा में भी कषाय है, और जो प्रतिकूलता है उसका दुख से डर होना वो भ्रम है, वो भी कषाय है। तो ये दोनों है वो दुख दुखमय परिणाम है, आकुलतामय परिणाम है, दोनों में से किसी में सुख नहीं है। पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु, गुजराती में वळी शब्द आवे छे, पुनरुन से वळी एम करीने लिए छे, पुनश्च એટલે आगे जा करके और कहते हैं, इस प्रयोजन के हेतु अरहंत आदि की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंध ही होता है। क्या कहते हैं कि कोई सांसारिक सुख के हेतु अरहंत भगवान की भक्ति करे कि मैं पूजा नियमित करूंगा, साल भर नियमित पूजा करूंगा तो मुझे पुण्य बंध होगा और मेरी सब प्रतिकूलताएं मिट जाएगी, तो ऐसे भाव से कोई भक्ति करता है तो उनको पाप बंद होता है, पुण्य बंद भी होता नहीं। क्या बताया, ये अभिप्राय की भूल बताई। कोई मन में ऐसा अभिप्राय धारण करता है कि मैं हमेशा जिनेंद्र का दर्शन करूंगा, पूजा करूंगा, शास्त्र स्वाध्याय करूंगा, दान करूंगा, ये सब मैं करूंगा तो मुझे पुण्य बंद होगा, तो मुझे भविष्य में प्रतिकूलताएं नहीं होगी। ऐसे अभिप्राय से कोई अरहंत आदि की भक्ति करते हैं, इसकी बात करते हैं। क्या कि इस प्रयोजन से मैंने अनुकूलता प्राप्त करने के प्रयोजन से, सांसारिक अनुकूलता के कारण अरहंत आदि की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण, ये कषाय तीव्र है उसमें पाप बंद होता है, पुण्य बंद भी नहीं होता। ऐसी बात लिया क्या, कहते हैं ना लोग आप इधर 100 रुपया का दान करो आपको आगे जा करके पुण्य बंधेगा तो 10,000 मिलेगा, आपने दिया 100 और 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 के गुणे 100 करे 10,000 हो जाएगा, उतना मिलेगा, 10,000 गुना मिलेगा, इसलिए दान ज्यादा करो। ज्यादा लेने के लिए तो वहां तो पाप बंद होता है, पुण्य बंद होता नहीं। ऐसे अभिप्राय से कोई शुभ कार्य करता है उसको तो पाप बंद होता है। देखो ये बात सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय के बिना समझ में नहीं मिले। लोग करते हैं धर्म के क्षेत्र में, लोग पुण्य करने को जाते हैं, शुभ भाव करने को जाते हैं, शुभ प्रवृत्ति करते हैं और अभिप्राय रखते हैं कि अभी शुभ प्रवृत्ति करेंगे तो इसका फल भोगने में अपने को दुख नहीं होगा, अनुकूलताएं रहेगी सब प्रकार की, उसमें तो शुभ भी बनता नहीं है, वो अशुभ कर्म बनता है, ऐसा कहते हैं। वो तीव्र कषाय है। उस प्रकार से शुभ कार्य की प्रवृत्ति करना वो परिणाम तीव्र कषाय का है, मंद कषाय का परिणाम वहां रहता नहीं है, अशुभ बढ़ जाता है। हाँ वो भाव भविष्य के संयोग की अपेक्षा से ऐसा भाव नहीं करना, इसका जो स्वरूप है वो विचार करना, अनंत भगवान का स्वरूप को विचार करना और ऐसा अपना स्वरूप है उसको ज्ञान में श्रद्धा में लेना, ऐसा भाव करना।
पहले बताएं कि इंद्रिय सुख का विषय भी प्राप्त हो सकता है।
हाँ, उसके निमित्त से जो पुण्य बनता है तो इंद्रिय सुख का विषय होता है, लेकिन ऐसा समझकर कोई ऐसा अभिप्राय बना ले कि इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए हम अनंत की भक्ति करें तो उसको तो पाप बंधेगा, उसको तो पुण्य भी बंधेगा नहीं।
मूल में अभिप्राय गलत हो
तो हाँ, तो अभिप्राय का बहुत बड़ा रोल है। अपने जो सुगानी जी के जो वचन हैं, अपने पत्र में भी है और चर्चा में भी है, उन्होंने बहुभाग उत्तर अभिप्राय की प्रधानता से दिया है। तो हमने एक दफे सारे ग्रंथ में से अभिप्राय विषयक इनके वचन छांट करके फिर कोई 10-12 घंटा चर्चा चलाया है कि अभिप्राय का रोल कितना, सारे परिणामों में अभिप्राय का कितना महत्व है, वो बात अच्छी तरह समझना चाहिए, वरना हम धोखे में रह जाएंगे। हम मानेंगे हम तो शुभ करते हैं, हम मानेंगे हम तो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, हम तो भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, लेकिन तुम्हारा शुभ भी नहीं रहता। अगर तुम्हें सांसारिक प्रयोजन की अभिलाषा रही अभिप्राय में तो शुभ भी होगा नहीं, ऐसा कहते हैं। મોટું કામ પાર પડે, ચાલો ભગવાન ના દર્શન કરી આવીએ, ચાલો એના નિમિત્તે પૂજા બનાવીએ, આપણું બહુ મુશ્કેલી માંથી પાર ઉતરી ગયા, મુશ્કેલી આવતી હતી પાછી ઠેલાઈ ગઈ, ચાલો એના નિમિત્તે ભગવાન નું એક આપણે વિધાન કરાવી નાખીએ, ચાલો આપણે સોનગઢ દર્શન કરી આવીએ, શું ये धर्म है, इस प्रकार का धर्म है नहीं, ये अलौकिक मार्ग है, लौकिक मार्ग नहीं है, वहां तो पाप बंधेगा, पुण्य भी बंधन होने वाला नहीं है। ऐसा मानने से सर्वोत्कृष्ट पाप मिथ्यात्व का होता है, क्या पाप की मिथ्यात्व की जो प्रकृति होती है, दर्शन चार घातिया में जो दर्शन वो की प्रकृति वो बंधेगी। इसके पीछे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय तो होगा ही, लेकिन मिथ्यात्व का पाप बड़ा सबसे बंधन में आ जाएगा। મિથ્યાત્વ થાય, પાપ બંધાય એમ કે છે, હા શું બંધાય, ઓક્ટોબર હો કઈ ભી હો, હું તો અભી તો લોગ બુદ્ધિમાન હો ગયે હૈ, જો પઢે લિખે લોગ હૈ, નઈ પીઢી આઈ રહી હૈ, જો वो तो सब बुद्धिमान है, बुद्धिवाद का जमाना है, वो तो साफ कहते हैं। और आचार्य रजनीश वगैरह तो वो खोल दिया सबको कि तुम क्या करते हो, सौदाबाजी करते हो, देना थोड़ा और लेना ज्यादा। हाँ, क्या देना थोड़ा और लेना ज्यादा, ये तो तुमने क्या किया, व्यापार कर लिया, धर्म के क्षेत्र में आकर के भी एक व्यापार कर लिया। वो तो आजकल तो वो लोग वैष्णव में भी ये बात बुद्धि की तो अभी बात चल रही है, क्योंकि शनिवार को हनुमान जी को कितना तेल चढ़ाना, क्या उतना तो तेल चढ़ावे, दो चार तोला तेल चढ़ावे, और क्या बोले कि हमको एक डिब्बा तेल मिलना चाहिए, इतना तेल के सामने क्या पूरा डिब्बा भर के मिलना चाहिए 15 किलो का। तो ये तो बात हो गया व्यापार की सौदाबाजी करने का, भगवान के साथ ऐसा किया जाता नहीं है,
अशुभ भाव
है, ये अशुभ भाव है। वो अलग बात है, वो तो क्या है, बहुत पाप करके फिर पैसा तो आ गया पुण्य के उद्देश्य, माना कि मैंने इतना पाप किया ना तो पैसा आ गया, पाप करने से पैसा मिल गया, अब थोड़ा पुण्य कर लो, तो पाप तो बहुत बड़ा किया और पुण्य का थोड़ा किया, मैंने 10 लाख कमाया और 10,000 प्रदान कर दिया, तो चोरी किया तो इतना बड़ा और दान दिया तो उतना थोड़ा, ऐसा वो बात है। इधर तो ये कहते हैं कि तुम कोई शुभ कार्य करते हो उसमें उसके फल की अपेक्षा रखते हो तो ये भाव अशुभ हो जाते हैं, भाव शुभ रहते हैं नहीं, ये कहने का साफ बात तो वो है। इधर माटे अपने कांजी स्वामी ने मानवा ये अशुभ भाव छे एम कहे, गुरुदेव कहते ना चापड़ी रखता ने लोग ले जाते हैं, गुरुदेव की चोरी कर जाते हैं, गुरुदेव की लकड़ी की चोरी कर जाते कि ये कोई सांप फिराते ना तो पैसे वाले हो जाते, तो उसको उठा जाओ। बहुत ले गए लोग, कोई ले जाए फिर कोई नहीं दे जाते गुरुदेव, तो कहाँ लेने को बाजार में जावे, पता चले कि कोई ले गए हैं, दिखेंगे आज तो है नहीं, अच्छा कोई ले गया है, फिर दूसरे दिन कोई दूसरी रख दावे, फिर गुरुदेव को तो चाहिए। साफ कहते हैं कि इससे कोई होता नहीं है, हमारे पास कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, जादू नहीं, चमत्कार नहीं, रिद्धि नहीं, सिद्धि नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास, तो ये तत्व है, अगर तुम ग्रहण करेगो तो मोक्ष हो जाएगा, बाकी हमारे पास कोई संसार की चीज लेने को आना ही मत, मत आना इधर, तो साफ बोलते थे। फिर भी लोभी जीव नहीं समझता है तो अपनी मान्यता को छोड़ता नहीं है, वो गुरुदेव की भी नहीं मानते कई लोग, गुरुदेव तो कहते अपने को तो लाभ होता है तो गुरुदेव को घर घर पे ले आते पगला कराने के लिए, दुकान पे ले जाते वही खाता में ओम करवा लेते, हाँ ये सब मिथ्यात के परिणाम है। हाँ ये सब ऐसे भी गुरुदेव के भक्त हैं कि गुरुदेव की बहुत भक्ति किया हो फिर भी देवाला निकल गया हो, ऐसे भी भक्त है, तो हमको तो बहुत का परिचय है। ऐसे भी है तो गुरुदेव ने क्यों कुछ नहीं किया, उनका देवाला निकला उस गुरुदेव ने क्यों कुछ नहीं किया, गुरुदेव करते ही नहीं थे, जिसका संयोग अच्छा हुआ उसमें भी गुरुदेव ने कुछ नहीं किया और जिसका कमजोर हो गया वो भी गुरुदेव ने कुछ नहीं किया। तो ये प्रकार की पद्धति छुड़ाने के लिए ये बात है कि इस प्रयोजन से के हेतु और अहंतादि की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंद ही होता है, इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं, इसलिए सांसारिक प्रयोजन का अर्थी होना नहीं, उसकी आकांक्षा रखना नहीं, उसका अभिप्राय रखना नहीं।
पाबंद ही होता है,
नियम से पाबंद होता है। परंतादि की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयमेव सिद्ध होते हैं। तुम अभिप्राय नहीं रखो तो भी प्रयोजन तो वैसे ही सिद्ध हो जाएगा संसार का तो, लेकिन प्रयोजन रख के करोगा तो तुम्हारा नुकसान बड़ा हो जाएगा। ये पाप बंध का कारण होगा, पुण्य बंध का कारण होगा ही नहीं। इस प्रकार अरहंतादि परम इष्ट मानने योग्य है, इसलिए जो अरहंत से आचार्य उपाध्याय और साधु आदि में पांचों ले लेना, ये आत्मा के परम हित के निमित्त भूत होने से उनको परमिष्ट मानना योग्य ही है। उसको परमिष्ट इसलिए उनको परमिष्ट कहने में आए हैं। यहाँ तक रखें।
भगवान जय हो परम कृपा।